नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की भारत की परिकल्पना पर जोर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 सप्ताह का वेतन नियोक्ताओं को देगी। भीषण चक्रवाती तूफान गज के आज तमिलनाडु में नागपट्टिनम और आसपास के इलाकों में पहुंचने की आशंका। सऊदी अरब के लोक अभियोजक ने पत्रकार जमाल खशोगजी की हत्या के मामले में 5 अभियुक्तों के लिए मौत की सजा की सिफारिश की। ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के प्रस्तावित समझौते पर कई मंत्रियों के इस्तीफे से प्रधानमंत्री टेरेसा मे की सरकार संकट में। किदांबी श्रीकांत और समीर वर्मा हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और क्रिकेट में गयाना में आज आईसीसी महिला विश्व 2020 प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आयरलैंड से। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की भारत की परिकल्पना को दोहराते हुए समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है। सिंगापुर में आज 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिंगापुर की 2 दिन की यात्रा पूरी कर श्री मोदी नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
प्रधानमंत्री का 2 दिन का सिंगापुर दौरा अत्यधिक व्यस्त था। पूर्वी एशिया के नगर राज्य में कल सुबह तड़के पहुंचते ही फुलर्टन होटल में श्री मोदी के प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सिंगापुर फिनटेक महोत्सव में मुख्य भाषण दिया। ऐसा करने वाले वो पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। इसके पश्चात श्री मोदी ने सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के शीर्ष नेताओं के साथ वार्ता की। शाम को श्री मोदी ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सम्मेलन में भाग लिया। आज सुबह प्रधानमंत्री ने सबसे पहले भारत आसियान अनौपचारिक सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री की ये यात्रा पूर्वी एशिया देशों के पक्ष में भारत की एक्ट ईस्ट नीति की ओर एक और मजबूत कदम है। तृप्ति श्रीवास्तव, सिंगापुर।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिमाह 15,000 रूपये से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश में 7 सप्ताह के वेतन की राशि सरकार नियोक्ताओं को देगी। सरकार ने यह फैसला इन शिकायतों के मद्देनजर लिया है कि कई कंपनियां मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने के बाद गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगे हैं और कुछ ने तो उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। महिला और बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि नियोक्ताओं को इस वेतन के लिए दी जाने वाली धनराशि श्रम कल्याण उपकर निधि में जमा राशि में से दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सरकार ने मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। मतदान 28 नवंबर को होगा। उधर छत्तीसगढ़ में विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के सिलसिले में विभिन्न जिलों का दौरा कर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के प्रयासों में लगे हैं। राज्य में इस चरण में 18 जिलों में 72 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सरगुजा के संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विभिन्न स्थानों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन हासिल करने आम सभाएं ली। राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने बीते 15 वर्षों में राज्य में विकास के अनेक करिश्माई काम किए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने भी आज प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में अनेक सभाओं को संबोधित किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
इधर राजस्थान में नामांकन पत्र भरने के चौथे दिन आज 88 सीटों के लिए 118 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे जमा कराए। अब तक भारतीय जनता पार्टी के 29 और कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों समेत कुल 262 प्रत्याशियों ने पर्चे जमा करा दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत, निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा के साथ निर्वाचन आयोग का दल कल राज्य के 2 दिन के दौरे पर पहुंचेगा।
निर्वाचन आयोग कल उदयपुर पहुंचेगा, जहां वह जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव पूर्व तैयारियों का जायजा लेगा। कल शाम आयोग जयपुर पहुंचेगा, जहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। आयोग शनिवार को जयपुर में अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। इसी दिन आयोग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारियों तथा अन्य संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
इस बीच तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ रजत कुमार ने आज राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की कि वे जाति और धर्म के नाम पर वोट न मांगें। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अपराध होगा और इसके खिलाफ शिकायत भी की जा सकती है। हैदराबाद में आज एक संवाददाता सम्मेलन में डॉ कुमार ने कहा कि वे इस बारे में सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है, आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो।
सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है?
केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए।
पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है, आज से हम सब बराबर हैं।
वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं।
बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लड़कियों से इंजीनियरिंग का अध्ययन करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज पटना में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही।
बेटियों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत प्रभावशाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में एक अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है तथा आज ग्रेजुएट हो रहे विद्यार्थियों में से लगभग 13% ही हमारी बेटियां हैं। यही स्थिति अन्य टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलती है। इस स्थिति में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों में हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ाना अनिवार्य है।
श्री कोविंद ने संस्थान में लड़कियों के कम प्रवेश पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को बराबरी का अवसर दिए बगैर हम देश के विकास का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्कूल पाठ्यचर्या में सामाजिक कार्य गतिविधियों को शामिल करने की आवश्यकता बताई है। वे आज मुंबई में जमना लाल बजाज पुरस्कार के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। श्री नायडू ने कहा कि स्कूल के दिनों से ही सामाजिक सेवा में शामिल होने से बच्चों के दृष्टिकोण में संवेदनशीलता और सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है। जनता दल यूनाइटेड ने आज पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी पूर्व मंत्री को बचा नहीं रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह दुष्कर्म मामले में सीबीआई के तलाशी अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद होने के बावजूद बिहार पुलिस द्वारा मंजू वर्मा की गिरफ्तारी न करने पर उच्चतम न्यायालय ने बिहार पुलिस को फटकार लगाई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सभी भारतीयों के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। नई दिल्ली में आज बचत और खुदरा बैंकों की 25वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ लोगों का वित्तीय समावेशन केंद्र का मुख्य एजेंडा बना रहेगा। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत खुदरा बैंकिंग और सभी के लिए वैश्विक समावेशन है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद औषधि निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद फार्मा क्षेत्र के कारोबार में 6% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। सऊदी अरब के लोक अभियोजक ने रियाद में कहा है कि तुर्की में इस्तांबुल में उनके वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खाशकजी की कथित हत्या के मामले में 5 सऊदी अधिकारियों को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलाम को हत्या के इस मामले में शामिल नहीं किया गया है। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के मुद्दे को लेकर समझौते के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों के त्यागपत्र से सरकार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मंत्री डोमिनिक राब ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि वे प्रस्तावित ब्रेग्जिट समझौते को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने बीबीसी न्यूज को बताया कि ब्रेग्जिट समझौते के मसौदे में भारी कमियों की वजह से मंत्रिमंडल को वो छोड़ रहे हैं। समझौते को लेकर संसद में प्रधानमंत्री मे को संसद सदस्यों के कड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कल घंटे की बैठक के दौरान समझौते पर अपनी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की सहमति ली थी। अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांत फरहा में तालिबान के साथ झड़पों में कम से कम 35 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। समाचार चैनल तलो न्यूज ने बताया कि तालिबान ने कल रात फरहा के बाबा बलोक जिले में शेवान, गर्नी और आब खोरमाए की सुरक्षा जांच चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान सुरक्षा बलों ने भी इसकी पुष्टि की है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
जो भी कह लो भैया, तुम्हारा मोहल्ला है बड़ा साफ सुथरा।
अरे ऐसे थोड़ी साफ सुथरा बन गया, हमने बनाया है।
वो कैसे?
सरकार के आदेश अनुसार अगर कोई RWS 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करता है तो उसे गीले कचरे से खाद बनाने का प्रावधान करना चाहिए और सूखे कचरे को तो पुनर्वृत्ति यानी रिसाइकिलिंग के लिए भेजना चाहिए। तो हमने भी अपने RWS के साथ मिलकर यही किया और नतीजा तुम्हारे सामने ही है।
वाह भैया, अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे और अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे और इस कचरे से बनी खाद का प्रयोग करके इसे हरा भरा बनाएंगे।
आओ अब जिम्मेदार बने और अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग में सबसे ऊपर ले जाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। भीषण चक्रवाती तूफान गज के आज देर रात तमिलनाडु में नागपट्टिनम के आसपास पहुंचने की संभावना है। चेन्नई के मौसम विभाग के प्रमुख डॉक्टर बालचंद्र ने बताया कि तूफान तट के निकट पहुंच गया है। तूफान का केंद्र इस समय नागपट्टिनम के पूर्व उत्तर पूर्व में 130 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे समुद्र तट को पार करने में कुछ और घंटे लगेंगे। नागपट्टिनम के आसपास पहुंचने के दौरान तूफान कमजोर पड़ जाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से घरों में ही रहने को कहा है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम चिन्हित स्थानों पर बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात हो रही है। अंतर विभागीय क्षेत्रीय टीम, अग्निशमन और बचाव कर्मी तथा पुलिस उनकी सहायता करेंगी। भारतीय नौसेना ने बचाव मिशन में अधिकारियों की सहायता के लिए अपने दो युद्ध पोतों को तैनात किया है। नौसेना ने अपने एयरबेस पर मल्टी मिशन समुद्री विमान P-8I और डोर्नियर हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा है। दक्षिण रेलवे ने तूफान के क्षेत्र की कुछ रेलगाड़ियों का मार्ग बदल दिया है या रद्द कर दिया है। तटवर्ती इलाकों में बस सेवाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट ने लंबे समय से अवसरों से वंचित निपुण शिल्पकारों की समृद्ध परंपरागत विरासत को काफी बढ़ावा दिया है। वे आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में 38वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने मंत्रालय के मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन और ग्राम उद्योगों के समावेशी विकास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.62% की तेजी से 119 अंक बढ़कर 35,261 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.38% की बढ़त से 40 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 10,617 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे मजबूत होकर दो महीने के उच्चतम स्तर ₹71.97 प्रति डॉलर पर आ गया।
आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत और आयरलैंड के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय टीम ने चार ओवर में बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए हैं। किदाम्बी श्रीकांत और समीर वर्मा हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज दूसरे दौर में श्रीकांत ने एचएस प्रणॉय को 18-21, 30-29, 21-18 से पराजित किया। वहीं समीर वर्मा चीन के चेन लॉन्ग के वॉक ओवर देने के कारण अंतिम आठ में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में पीवी सिंधु दक्षिण कोरिया की संग जी ह्यून से संघर्षपूर्ण मुकाबले में 24-26, 20-22 से हार गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शांतिपूर्ण, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की भारत की परिकल्पना पर जोर दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा, सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 सप्ताह का वेतन नियोक्ताओं को देगी। भीषण चक्रवाती तूफान गज के आज रात तमिलनाडु में नागपट्टिनम और आसपास के इलाकों में पहुंचने की आशंका है। सऊदी अरब के लोक अभियोजक ने पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में 5 अभियुक्तों के लिए मौत की सजा की सिफारिश की है। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट के प्रस्तावित समझौते पर कई मंत्रियों के इस्तीफे से प्रधानमंत्री टेरेसा मे की सरकार गंभीर संकट में आ गई है। और क्रिकेट में गयाना में आज आईसीसी महिला विश्व कप 2020 प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आयरलैंड से हो रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।